नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो हो सकता है आपके पास ये जवाब हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हम इस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि क्या सुख हमें बाहर से मिल सकता है, क्या खुशी हमें बाहर से मिल सकती है, क्या खुशी अपने अंदर ही नहीं है, अंदर कैसे तलाशें। और जो हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं उसमें पिछली बार हमने ये बात की थी कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है उसके क्या कारण हैं और किस तरह की सिचुएशंस में हम एंगर को जस्टिफाई करते आए हैं। एंगर एक वेपन जरूर है लेकिन उससे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है, कभी भी वो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे सकता है। और आज बात करेंगे खुशी की कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए। कैसे मिल सकती है वो खुशी, क्या है खुशी, हैप्पीनेस कैसे डिफाइन की जा सकती है और कौन से रास्ते पर चलकर हम उसे पा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
नमस्कार।
और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सुश्री शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो अगर हम पिछली कड़ी में देखें तो हमने ये डिफाइन किया था कि एंगर के कारण क्या है और कहीं ना कहीं जो हम वेपन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उसे देखते थे वो नहीं है, उसे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती है। एंगर का ही एंटीडोट या एंगर से दूर जाने का एक तरीका हैप्पीनेस है, ये आपने कहा था। तो क्या हम हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हैं आज के इस वक्त में, क्या सुख को या खुशी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ?
मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन में इतना जाना नहीं चाहिए। देखो, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्यार की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है या प्यार इम्पोर्टेंट है?
प्यार।
आपको प्यार चाहिए? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कुछ भी हो, प्यार मिल गया संतुष्ट होंगे जीवन में। तो वैसे ऐसे ही है कि भी सुख की डेफिनेशन में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बस जनरल बात पता होनी चाहिए, हमें ध्यान में तो ये रखना चाहिए कि कौन सी बात आपको सुख देती है वह एक और इश्यू है, परंतु वह सुख सदा के लिए टिकता है या नहीं। या मुझे थोड़ा समय, दो घंटा सुख का अनुभव हुआ फिर दुख का अनुभव हुआ, ऐसी स्थिति हमारी न रहे। और एक जो लेवल है वह सदैव आनंद की स्थिति, मन आपका हल्का है, शांत है, खुशनुमा है, इस प्रकार की स्टेज आपकी जब टिक जाए, एक जिसको परपेचुअल हैप्पीनेस कहे, वह सबसे बेस्ट है।
एटर्नल हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हमेशा हम सुख का अनुभव
करते रहे।
लेकिन सिस्टर शिवानी, बात उसी पे आती है कि आज जब हम सब कुछ तलाश रहे हैं, जब हमारी सारी पुरानी धारणाएं जिसपे हम ये कहते थे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, अब जब वो सारी मान्यताएं तोड़ने पे आए हैं, हम नए बिलीफ सिस्टम्स को ले रहे हैं या नए एहसासों को ले रहे हैं, ऐसे में जो जो बातें मैं अभी तक मान रही थी कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, अपना परसेप्शन चेंज करना है? खुशी बेसिकली, अगेन डेफिनेशन वाली बात नहीं, लेकिन एक एहसास है, वो एहसास कब तक कायम रहेगा और क्या वो सही मायने में मैं उसे समझ पाऊंगी?
हैप्पीनेस जैसे भाई साहब ने कहा, एक एहसास, एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, एक वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। यू नो, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता। बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं, यू नो इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ. डू आई वॉन्ट देन नाउ वट एज हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्प्ररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट. सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
और अगेन बात वही आ जाती है कि फीलिंग कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय थॉट. सो फाइनली एवरीथिंग एक्चुअली यू नो अगर हम देखें तो कम्स डाउन टू थॉट. तो खुशी की जो बात की है, जो हमने फीलिंग की बात करी है, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है. थॉट्स जनरेट जो होते हैं. अब रॉन्ग बिलीफ्स पे हम जी रहे थे वो हमारे थॉट जनरेट करते थे. बिलीफ्स बदल रहे हैं, नए बिलीफ्स लेकर आते हैं. तो क्या वो नए बिलीफ्स कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने बिलीफ्स के साथ टकराएंगे और मैं उनको ओवरपावर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? और क्या मैं नए जो थॉट्स आ रहे हैं क्या मैं वो भी सही हूं, सही लेकर चलूं? बिकॉज अगेन वी हैड टॉक्ड अबाउट इट दैट द थॉट्स आर ग्रे. देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट थॉट. कोई एक प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव थॉट नहीं होता है. तो वो ग्रे में होता है. तो तभी मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स जो हैं वो प्योर हैप्पीनेस या प्योर दुख वाली नहीं आती हैं. वो कहीं बीच में ही रह जाती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली.
नहीं, लेकिन वो डिपेंड है ना आप कितनी देर उस तरह की थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी चीज वो खुशी आपसे. जैसे हम कहते हैं अभी हम खुश थे, अभी ये लैपटॉप खरीदा आई वॉज वेरी हैप्पी. उतनी देर में आप सामने से आए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब खुशी नहीं है, अब गम है. ये भी मैंने ही क्रिएट किया था, ये भी मैंने ही क्रिएट किया. तो इट्स ऑल माय क्रिएशन. तो इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम, बट इट इज लाइक आई हैव अ चॉइस कि मुझे कितनी देर के लिए वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट करनी है. देयर विल बी अ वेरिएशन. एक परफेक्ट 100 स्कोर नहीं है कि दिस इज द बेस्ट थॉट. लेकिन देयर आर सो मेनी थॉट्स व्हिच विल गिव मी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट्स जस्ट दैट आई डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट काइंड ऑफ थॉट. यू नो इट वोंट बी वन सिंगल थॉट. बहुत सारी थॉट्स हैं जो हमें वो एक अच्छी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं. तो हम वो सारी तरह की थॉट्स क्रिएट करें. यू नो एक पोजिशन तक पहुंचना है. लोग खुश नहीं होते जब तक वो उस डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं. और फिर जिस दिन उस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक सो कॉल्ड के आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी टुडे, बट आफ्टर 2-3 डेज नाउ आई हैव समथिंग एल्स. तो फिर इसीलिए फिर दैट्स माय चॉइस. देन आई एम अलाउइंग माय सेल्फ टू बी हैप्पी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी कपल ऑफ ईयर्स. उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट रख दिया.
सक्सेस इज नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, बट सक्सेस इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑन द पाथ. वो जो रास्ता अपना आप वहीं पर हर मुकाम पर आपको सुख का अनुभव हो, वह सचमुच सक्सेस है.
अगर हमारे थॉट्स हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करते हैं बिकॉज फीलिंग को गवर्न कर रहे हैं एंड दैट फीलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट. मैं कॉन्स्टेंट अपने जो थॉट्स है उन्हें चेक कैसे कर सकते हैं?
उसको चेक करने के लिए आपको जागृत होना हो. यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात है, भले इस पर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए. अगर आप सदैव जागृत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है, वह जागृति होगी तो आप पकड़ सकेंगे कि एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आया, समझ में आ जाएगा कि भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस है.
मैं जागृत नहीं हूँ लेकिन मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ. तो मैं वो जो पूरी जर्नी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ उस जागृत होने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें चल सकती हूँ.
दैट्स सी अवेकनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और वो भी होता है कि जागृत होने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं. यू नो इट्स नॉट, दिस इज नॉट लाइक एक बार आप जाग गए तो आप जाग गए. इट्स लाइक यू नो क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं और आप फिर वही पुराने बिलीफ सिस्टम की तरफ चले जाते हैं. दूसरे ने मुझे परेशान कर दिया. एट दैट टाइम यू हैव टू क्विकली वेक योर सेल्फ अप. सो इट्स नॉट कि आप हमेशा जागे हुए हैं. आप बीच बीच में फिर वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम कभी कभी वापस आ जाता है. बट इट्स ऑल अबाउट कितनी जल्दी आप अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि यू फॉलन ऑफ टू स्लीप, वेक अप.
अवेयरनेस इज डिफरेंट आई थिंक. एक जागृति अलग बात है.
अवेयरनेस
जो बोल रहा हूँ वो अवेयरनेस कह रहा हूँ. इस समय मैं बैठा हूं है ना, मुझे क्या हो रहा है कि भी पैरों में क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी है उसके बारे में सजग हो जाना, दैट इज अवेयरनेस. और आप में अगर वह सजगता आ गई तो एक भी नेगेटिव विचार आएगा पता चल जाएगा और फिर उसको आप मोड़ सकते हैं. वन एक स्टेप है, परंतु वह जब तक जागृति नहीं है मोड़ना इम्पॉसिबल। और क्योंकि आज लोग अवेयर नहीं है, यहां तक कि आपको पूछे कि भी सवेरे क्या नाश्ता किया था याद है, कई बार आप देखेंगे आपको पता ही नहीं क्या किया, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट विथ अवेयरनेस। तो ऐसे सचमुच तो हर स्टेप अभी कैसे बैठे हो वो जागृति के साथ बैठो, क्या हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है चेहरे में, क्या हो रहा है, वह जागृति हो तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल।
दैट्स वंडरफुल एक्चुअली, सजगता के साथ अगर हम जिंदगी जीते रहे तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा एहसास तो हो ही जाएगा कि दिस इज समथिंग यू नो व्हिच इज नॉट गुड।
और इसके लिए शायद अगर बीच बीच में साइलेंस में हो जाए तो वो सजगता इजीली आ जाती है।
कि ब्रह्मा कुमारी इसमें हम अब तो हर घंटे ही अभ्यास करते हैं,
वही जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए हर घंटे
की जो हम बात कर रहे हैं कि एक हर एक घंटे बाद खुद अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर मौन में जाएं हम।
मौन एंड चेकिंग। सी मौन एक होता है कि फिजिकली आप चुप हो गए, बट दैट्स नॉट इनफ। फिजिकली चुप होकर करना क्या है, करना यह है कि मन में देखना इस टाइम क्या चल रहा था, इज इट द राइट डायरेक्शन, इफ इट्स राइट इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट स्टॉप चेंज।
लेकिन कई बार तो खुद उस वक्त जैसे चल रहा अभी आज मुझे अभी कहें आप बातें करते करते पॉज लेकर मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अंदर क्या चल रहा है।
नहीं, आप रुक कर देखेंगे तो धीरे से वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है अभी। सिर्फ पॉज करना है, शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस तरफ कभी देखा नहीं है, तो एकदम से देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, टू मच कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर फिर भी करते रहिए, इवन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी करते रहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन योर थॉट्स। अभी वो बहुत फास्ट है तो वो बिल्कुल कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ये पॉजेस करने से धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी बहुत क्लियर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू चेंज। लेकिन अगर रुक के कभी देखा ही नहीं तो क्या चल रहा है तो चेंज करने की मर्जी नहीं है।
टेकिंग अ पॉज एंड थिंकिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं,
नॉट थिंकिंग अबाउट इट, सी हियर दैट्स द डिफरेंस, डोंट थिंक एनीथिंग एट दैट टाइम, जस्ट स्टॉप एंड लुक
कि क्या हो,
यू नो डोंट क्रिएट न्यू थॉट्स, नो क्रिएटिंग न्यू थॉट्स थिंकिंग कि मैं, जस्ट स्टॉप एंड लुक, इट्स लाइक आई स्टॉप एंड लुक व्हाट आर यू वेयरिंग, सिमिलरली आई जस्ट स्टॉप एंड आई लुक व्हाट एम आई थिंकिंग, आई डोंट स्टार्ट थिंकिंग एनीथिंग डिफरेंट,
देयर इज अ डिफरेंस। लुक जो कह रहे हैं भाई, वॉच योर सेल्फ, बहुत अच्छा कहा है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, कि जो अंदर में ऑब्जर्वर है उसी को ऑब्जर्व करो।
एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर सकते हैं,
बस आप एक बार अभी करके देख लीजिए, हर एक सारे दर्शक अभी बैठकर देख सकते हैं, कुछ भी सोचना बंद कीजिए, जिस चेक कीजिए अभी क्या चल रहा है मन में।
और जब हम ये करते हैं तब और एक बात आती है कि वेन यू वॉच देन यू रियलाइज कि नो समबडी एल्स इज वॉचिंग, आई एम नॉट दिस बॉडी, फिर ये कहना नहीं पड़ेगा, ये तो समझाना पड़ता है कि भई आप ये शरीर नहीं है, एक चेतना है, परंतु अगर आप ये ऑब्जर्व करने की आदत डालो तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो और कोई चेतना है, ये शरीर नहीं है,
बिल्कुल,
और ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी।
जब हम अपने आप से ही थोड़ा ऊपर उठ के खुद को देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है ये कि हर घंटे अगर हम देख पाए। डॉक्टर साहब, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस हर पल जो हैप्पीनेस, हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ये कई बार हम नहीं रह पाते, नहीं पॉसिबल हो पाता। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कितनी कितनी देर तक मुझे खुशी दे सकती है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट टाइम,
इंटरेस्टिंग।
हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, मैंने कुछ और खरीदा, कुछ और चीजें की, वो व्यक्ति मेरे साथ मिल गया, ज्यादा देर तक हुई। कौन सी ऐसी बात हो सकती है हमारी जिंदगी में जो उस राहत तक हमें ले जाए जो इटर्नल होगी, इटर्नल हैप्पीनेस की बात हो?
थोड़ा सा सोचा इसके बारे में, कहते हैं कि आपको एक दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो फिशिंग करने के लिए जाओ तो एक दिन आपको सुख मिलेगा, एक मास के लिए सुख चाहिए तो मैरिज करो।
अच्छा, बस
देखना सचमुच आप स्टडी करना, वो जो हनुमान पीरियड है ना तभी सुख होता है, उसके बाद फिर से बस खुशी गम वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद नहीं, तब रियलिटी को फेस करना पड़ता है। फिर कहते हैं कि भी एक साल के लिए हैप्पीनेस चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्च्यून, कहीं से पैसे मिल जाए तो एक साल तक आपको सुख मिलेगा, तो जीवन भर आपको सुख चाहिए तो हेल्प समवन, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ कॉज हायर देन योरसेल्फ। और कहेंगे कि अनेक जीवन के लिए आपको अगर सुख चाहिए तो राजयोग का अभ्यास करो, ताकि वह संस्कार बनेंगे। ये जो सारा प्रोसेस संस्कार बनेंगे, इस जीवन में तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ही, परंतु आने वाले अनेक जीवन में भी सुख का अनुभव होगा।
क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस कि ये जर्नी जो है ये कंटिन्यूस है, मतलब वही लिबास हम बार बार बदल लेते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप तो वही रहता है, और वो फिर कार्मिक डेप्थ साथ साथ चलते हैं। क्या जो हमारी हैप्पीनेस है, जो पूरी ये जर्नी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक, क्योंकि कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली समबडी गिव्स मी अनहैप्पीनेस, आई डोंट इवन नो यू, लेकिन आप के साथ मेरा काम करना मुझे अनहैप्पीनेस दे रहा है, आप कुछ कर गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई चीज कोई बात मुझे अनहैप्पीनेस दे रही है, इज इट बिकॉज ऑफ ए टाइम्स वी कैन से दैट इट इज कार्मिक डेट?
इट इज, सी एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट एक्चुअली। हर चीज जो हो रही है, हर इंटरेक्शन जो हो रहा है, हर शब्द जो हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, दिस इज समवेयर कनेक्टेड, तो वो कार्मिक अकाउंट है। लेकिन हम हर चीज में उसको कार्मिक अकाउंट सी वी डोंट वांट टू यूज एनी वेपन जहां हम अपने आप को फिर लिबर्टी देना शुरू कर देते हैं।
ऐसा तो होना ही,
इन्होंने ऐसा किया, कार्मिक अकाउंट है मेरा, यू नो मुझे, नो इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने जो किया, देन अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग, उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट था, अब आपके ऊपर है, अगर आप स्टेबल रहेंगे उस परिस्थिति में तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। लेकिन अब अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपने फिर वो यू नो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्ड्स बोले, फिर अब आप एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको फिर आपको रीसेटल करना पड़ेगा। तो हम लोग कई बार ये चेक करते रहते हैं कि हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हम एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां हम इंटरनली स्टेबल हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। क्योंकि सेटलमेंट, जहां जैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से और मैं कर्जा आज लौटा रही हूं, तो लौटाते समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज स्टेबिलिटी। लेकिन जहां मैं कर्जा ले रही हूं तो वो एक बोझ हो जाएगा कि मैंने एक कर्जा लिया। तो जहां स्टेबिलिटी है अंदर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जहां डिस्टर्बेंस है अंदर, एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
तो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति के कारण, मेरी जिंदगी में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। कई बार देखा गया ऑफिस में जब हम काम कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी घर में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक मेजर अनहैप्पीनेस का एक रिश्ता कई बार डेवलप होता है, बेटा और बच्चा और यू नो फादर एंड सन का बेसिकली कई बार देखा गया है, देयर इज अ मेजर टसल गोइंग ऑन। तो क्या वो अगेन इज इट अ कार्मिक,
इट इज अ कार्मिक अकाउंट, सो हाउ डू आई सेटल इट नाउ? क्योंकि एट अ वेरी हायर लेवल, लेकिन मेडिटेशन टीचेस अस अ वे टू सेटल इट, कि हम जैसे जब योग में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वी आर चैनलाइजिंग आवर थॉट्स, तो तब हम उस व्यक्ति को या कहें उस आत्मा को इमर्ज करते हैं, यू नो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माई माइंड, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, तो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माई माइंड एंड गिव वेरी पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वी डू दैट एट द एनर्जी लेवल, एंड ये अगर हम कर लेते हैं, अगर हम वर्ड्स से ये करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो ये बहुत बड़ा बैरियर बीच में आ जाता है। लेकिन हम अगर थॉट पावर पे ये कर लेते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी यू नो इट जस्ट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आप उस आत्मा तक उस एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। वो बोल से बोलकर करने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट देकर या कुछ बाह्य चीज करके करने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज उस आत्मा को इमर्ज कीजिए और उसको ये प्योरिटी पॉजिटिविटी की एनर्जी यू नो डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट टू सेंड दैट एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी कि हो सकता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, लेट्स फिनिश इट नाउ, अब नहीं, अब हम और एक दूसरे को ये तकलीफ इस पेन से नहीं लेके जा सकते हैं, आई फॉरगिव यू, यू नो इफ इन केस समबडी हैज डन समथिंग टू यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज हम थॉट पावर से वो वाइब्रेशन भेजते हैं, आई फॉरगिव यू, आपने कुछ नहीं किया है. एंड इन अदर केसेस प्लीज फॉरगिव मी यू नो वट एवर डिपेंडिंग ऑन द केस. ये एनर्जी लेवल पर अगर हम कर लेते हैं, थॉट लेवल पर, रिलेशनशिप्स में बहुत एक यू नो यू विल फाइंड अ डिफरेंट रिलेशनशिप. इट रियली वर्क्स. इसको थोड़े दिन के लिए, महीना दो महीना या जब तक वो नहीं होता है, एंड एक तो इसको मेडिटेशन के दौरान करें, और दूसरा जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, just emerge that thought all over again without saying or doing anything. Just look at the soul and say, it's okay, everything is fine between internally. This is not, you know, superficially. Ye bahut conviction ke saath, and this is what you want. It's not superficial. You want that relationship to work. And positivity, not attachment. Attachment wala nahi work karega. It's that positive relationship with the soul. It works.
इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स इसी जन्म में, जहां हमें एहसास हो, हम सेटल कर सकते हैं, और हम अपने डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं. प्रारब्ध को बदलने की बात जो कही जाती है. डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो नहीं, कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस दे रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा कहीं कोई केमिकल रिएक्शन भी है कि वाई देर आर पीपल जस्ट हम देखते ही हमें उन्हें बहुत अच्छा लगते हैं, कई बार टोटल अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है उसमें?
मोर देन केमिकल रिएक्शन मैं कहूंगा कि उनका जो ऑरा है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है.
ऑरा मींस
बेसिकली वी आर नॉट इन ट्यून विथ ईच अदर. आमतौर पर
हमारी
फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती. वो भी सत्य है, लेकिन ऑरा तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं. क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटोग्राफ लिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स आती है, राइट लेफ्ट टॉप में. ऐसे ही दूसरा एक है जिसको कहा है पीआईपी कैमरा, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी. यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी यह कैमरा है. हमने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर. उसने एक छोटी सी बात जो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इनोवेटिव बात सोची कि एक व्यक्ति को का हाथ ऐसे रखो और उसका पीआईपी का फोटोग्राफ लिया गया, तो सारे उसके लेयर्स आ रहे थे. दूसरे को कहा तुम्हारा भी करो, उसके भी लेयर्स आए. फिर दोनों को आप नजदीक लाओ ऐसे, और फिर फोटोग्राफ लिया. तो एक यूनिक चीज है सामने आई. भले एक एक्सपेरिमेंट था, परंतु बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति का समझो यहां पर येलो रेज आ रहे थे, तो जब दूसरे ने ऐसे रखा तो इसके येलो शिफ्ट हो गए.
ओके.
और इसका इसके जो रेज थे वहां आ गए.
और दूसरे के क्या थे मतलब?
वो जो भी थे
तो उसकी ओरा ने इनके ऊपर
इफेक्ट किया. तुरंत मुझे इंटरफेरेंस हुआ कि दिस पर्सन इज मोर पावरफुल. इसका ओरा पावरफुल है, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया तो इसका शिफ्ट हो गया. तो ऐसे हमें भी करना चाहिए.
तो
हम अपने ओरा को इतना पावरफुल
कैन वी चेंज आवर ओरा आल्सो?
वी कैन मेक इट पावरफुल. मेडिटेशन से चेंज होता
ही होगा ना,
थॉट से ही होगा. जो आत्मा की स्थिति है वो वास्तव में तो एनर्जी फील्ड है कि हमारे में एक तो आत्मा है, दूसरा ये शरीर है, और जो आत्मा के वाइब्रेशन शरीर में जाते हैं वही ऑरा क्रिएट करते हैं. कि जो शरीर से बाहर भी आएंगे, क्योंकि अणु अणु उस वाइब्रेशंस को बाहर ट्रांसमिट करेगा, तो वही वास्तव में ऑरा है. तो आत्मा की स्थिति अगर इम्प्रूव हो, आप ज्यादा शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा. तो ये करना चाहिए.
आत्मा टेक ओवर कर ले जब, तो आपका और स्ट्रांग हो जाए.
नहीं नहीं, आत्मा तो है ही, आत्मा टेक ओवर नहीं करेगी. आत्मा ने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज किया. जब ये किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं तो जिन लोगों की बहुत नेगेटिव थॉट्स होती है, बहुत टॉक्सिक थॉट्स होती है, तो उनका ये पूरा एरिया वो लाइट का ग्रेश की तरफ आता है, ग्रे कलर, डार्क पर्पल, ब्लैकिश. और जिनकी बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट्स है उनका येलो, क्रीम, व्हाइट आएगा. एनर्जी लेवल तो है ही, लेकिन वो जितनी प्योरिटी की तरफ होगा वो ऑरा लाइट कलर का होगा. इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के लिए, धर्म पिताओं के लिए वो व्हाइट सर्कल जो हम दिखाते हैं, दैट इज द ऑरा, प्योर सोल का,
जिसे कहा जाता है. ओके. तो अगेन हमने पूरा ये जो हमारी बातचीत रही आज, जिसमें कई सारे एस्पेक्ट सामने आए कि हैप्पीनेस अगेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. आज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, खुशी की बात कर रहे थे. वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा के लिए भी, कभी खुशी कभी गम ना करके, अपने साथ रख सकते हैं. और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है. और जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हमें हुआ आज की, कहीं ना कहीं हर एक घंटे में अगर आप अपने थॉट्स को चेक कर लें खुद, कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, क्या हमारे थॉट सही डायरेक्शन में हैं, सो दैट विल हेल्प. एंड अगेन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है अगर जो कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम अपने कार्मिक डेब्ट्स भी आत्मा के स्तर पर पहुंच के उसके साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसमें ऑरा भी काफी मायने रखता है। आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
बहुत कुछ जाना आज हमने अपने बारे में, कुछ ऐसे एहसास जो अभी तक नहीं हुए थे, धीरे 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 ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे। और तब हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए तो जिंदगी जो है वही मेडिटेशन बन जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।